यशया अध्याय 7। उज्जिया मर चुका था और उसका पोता आहाज राजकाज संभाल रहा था। यशया अध्याय 7 पद 1। यहूदा का राजा आहाज, जो योताम का पुत्र और उज्जिया का पोता था, उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इसराइल के राजा रमल्या के पुत्र पेका ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की। पेका इसराइल अर्थात उत्तरी राज्य में राजकाज संभाल रहा था। उसने इसराइल के राजा की हत्या करके सिंहासन ले लिया था। उत्तरी राज्य इसराइल के राजा पेका ने आराम सीरिया के राजा के साथ संधि करके दक्षिण राज्य यहूदा पर आक्रमण करने की योजना तैयार की। यशया अध्याय 7 पद 1 और 2। परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। तब दाऊद के घराने को ये समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रेमियों से संधि की है। तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। दूसरे शब्दों में दक्षिण राज्य यहूदा इस आक्रमण से कांप उठा, क्योंकि दो राज्यों की सेना उनके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए आ रही थी। दक्षिण राज्य यहूदा के लोग कह रहे थे, उन्होंने संधि की है, परंतु हम क्या कर सकते हैं। यशया अध्याय 7 पद 3। तब यहोवा ने यशया से कहा, अपने पुत्र शार्यशूब से भेंट करने के लिए जा। शार्यशूब का अर्थ है इसराइल के थोड़ों की वापसी होगी। ये उसका पुत्र का नाम था। लड़के के लिए अच्छा नाम, परंतु उससे अच्छा नाम दूसरे पुत्र का था। उसका नाम मेहर शलेल हशबाज था। अच्छा है कि नहीं? यशया अध्याय 7 पद 3 और 4। धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे पर आहाज से भेंट करने के लिए जा और उससे कह, सावधान और शांत हो और उन दोनों धुआं निकलती लुटकियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्या के पुत्र से मत डर, और ना तेरा मन कच्चा हो। मत डर, तेरा दिल ना घबराए, बस परमेश्वर के समक्ष शांत हो जा। यशया अध्याय 7 पद 5 से लेकर 7 तक। क्योंकि अरामियों और रमल्या के पुत्र समेत एप्रेमियों ने ये कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। इसलिए प्रभु यहोवा ने ये कहा है कि ये युक्ति ना तो सफल होगी, वे संयुक्त राज्य खड़े न रह पाएंगे। यशया अध्याय 7 पद 7 और 8। और न पूरी, क्योंकि आराम का सर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है। इसराइल का उत्तरी राज्य जो एप्रैम का वंश था 65 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा। शमरोन, जिसे समरिया भी कहते हैं, उत्तरी राज्य की राजधानी थी। निश्चय ही 65 वर्ष बाद अशूरों ने उसका नाश कर दिया। यशया अध्याय 7 पद 8 में आगे लिखा है, फिर एप्रेम का सिर शोमरोन, ये उत्तरी राज्य की राजधानी थी। यशया अध्याय 7 पद 8 में अंत में लिखा है, और शमरोन का सिर रमल्या का पुत्र है राजा पेका। यशया अध्याय 7 पद 9। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। मत डरो, परमेश्वर बैरियों को तोड़ देगा। परमेश्वर तुम्हारा संरक्षक है, वो इस संयुक्त सेना का नाश करेगा। यशया अध्याय 7 पद 10 से लेकर 16 तक। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो, वो ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर आप मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वो लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वो देश जिसके दोनों राजाओं से तो घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। राजा पेका और रसीन नाश किए जाएंगे। यहां वो लेख है जो भविष्यत वक्ताओं को पवित्र आत्मा में दिया, परंतु वे खुद इन बातों को समझ न पाए। यशया एक वर्तमान स्थिति की बात करते करते अकस्मात ही भविष्य के एक चिन्ह की भविष्यवाणी कर देता था। उसकी अधिकांश भविष्यवाणी के दो अर्थ थे। भविष्यत वक्ताओं ने स्वयं उनको जानने की कामना की, परंतु वे स्वयं उन्हें समझ नहीं पाए थे। यदि भविष्यवाणी का निकटतम रूप देखें तो एक बच्चे का जन्म होगा, अर्थात लेखा देने का समय बुरे का त्यागना और भले को ग्रहण करना, अर्थात 12 या 13 वर्ष की आयु। इसका अर्थ यह है कि 12 या 13 वर्ष से पूर्व आराम और उत्तरी राज्य इसराइल का सर्वनाश हो जाएगा। ये तो हुआ भविष्यवाणी का निकटवर्ती अर्थ। अब दूर भविष्य में इसका अर्थ देखिए। ये भविष्यवाणी यीशु के जन्म से संबंधित थी। इसका अर्थ पवित्र आत्मा ने मती 1:23 पद में दिया है। जो वचन प्रभु ने भविष्यत वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो गया। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और इसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ। ये यीशु के संबंध में एक भविष्यवाणी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इसे मती के 1:23 में भविष्यवाणी कहकर लिखवाया है। यूसुफ और मरियम की मंगनी हो गई, परंतु यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती थी। ये गर्भधारण पवित्र आत्मा से था कि भविष्यवाणी पूरी हो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। बहुत से लोग नहीं मानते कि यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ था, क्योंकि वे बाइबल के उन अनुवादों को पढ़ते हैं जिनमें उनके अनुवादकों ने इब्रानी भाषा के विद्वान जेसिनियस के लिखे शब्दकोश से कुवारी के इब्रानी शब्द का अर्थ युवती लिया है। जेसेनियस चमत्कारों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने अपने शब्दकोश में कुवारी के स्थान पर युवती शब्द लिखा है। परंतु यदि हम बाइबल के यूनानी अनुवाद में कुवारी शब्द को देखेंगे तो वहां यूनानी में कुवारी ही अनुवाद किया गया है। यूनानी भाषा के अनुवादकों ने इस शब्द का अनुवाद किया था। उन्होंने यीशु के जन्म से 200 वर्ष पूर्व पुराने नियम का अनुवाद किया था और वे इब्रानी के भी ज्ञाता थे। अतः ये स्पष्ट है कि परमेश्वर ने अपने संदेश में कुवारी ही कहा था और मरियम के चुने जाने से ये सिद्ध हो गया था। ये दूर भविष्य से संबंधित अर्थ है, और निकट भविष्य से संबंधित अर्थ था कि रसीन और पेखे का सर्वनाश होगा, और ये भविष्यवाणी सच हुई। अब वो यहूदा पर आक्रमण की भविष्यवाणी देता है। यशया 7:17। यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर। यहां ध्यान रखिए कि वो राजा आहाज को संबोधित कर रहा है। यशया अध्याय 7 पद 17 से लेकर 20 तक। ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रायम यहूदा से अलग हो गया तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात अशूर के राजा के दिन। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती है और उन मधुमक्खियों को जो अशूर देश में रहती है सीटी बजाकर बुलाएगा और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब भटकटियों और सब चराइयों पर बैठ जाएंगी। उसी समय प्रभु महानद के पार वाले अशूर के राजा रूपी भाड़े के छुरे से सर और पांव के रोए मूड़ेगा, उससे दाढ़ी भी पूरी मुड़ जाएगी। यहां परमेश्वर कह रहा है कि वह अशूर के राज्य को उठाएगा। अशूर आराम सीरिया के कुछ ही दूर पर उत्तर पूर्व का राज्य था। अशूर राज्य सीरिया को नाश करेगा और मिस्र यहूदा पर आक्रमण करेगा। यशया अध्याय 7 पद 21। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक क्लोर और दो भेड़ों को पालेगा। और वो आगे कहता है यशया अध्याय 7 पद 22, और वे इतना दूध देंगी कि वो मक्खन खाया करेगा, क्योंकि शेष बहुत ही कम लोग रहेंगे जिसके कारण खेती की भूमि कांटे उत्पन्न करेगी। यशया अध्याय 7 पद 25, और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं उन सबों पर कंटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा, वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रौंदने के लिए होंगे।